हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। नैना और सुनैना घर से निकलने वाली थीं कि उनके पिता जोर से चीखे और अपने दिल पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर उनकी सौतेली माँ जल्दी से उनके पास पहुँची और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। नैना दरवाजे पर रुक गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्या हुआ था। अरे अरे, कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी जान जाती है तो जाए, तुम्हारी बेटियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो हमेशा से कहती थी, बहुत ज़्यादा स्वार्थी और बेकार हैं ये दोनों लड़कियाँ। ज़मीन पर आधी बेहोशी और दर्द से छटपटाते हुए पति का हाथ पकड़कर सुनैना की सौतेली माँ ऐसे समय में भी सुनैना और नैना को ताना देना नहीं भूली। वहाँ जो कुछ हो रहा था उसे देखकर नैना और सुनैना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे दोनों भले ही अपने पिता से नाराज थीं, लेकिन उनकी सौतेली माँ कुछ भी कहे, वे इतनी स्वार्थी नहीं थीं कि अपने पिता को इस हालत में देखकर वहाँ से चली जाएं। क्या हुआ, क्या हुआ पापा को, और आप इस तरह से ये सब क्यों बोल रही हैं? डॉक्टर को फ़ोन करिए ना। सुनैना भाग कर आगे आई और अपनी सौतेली माँ से कहा। नैना की आंखों में आंसू आ गए थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या नहीं। मुझे क्या पता क्या हुआ है, और डॉक्टर को फ़ोन? कौन सा डॉक्टर आएगा इतनी रात को? अभी आधी रात है और ये सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। मुझे तो लगता है दिल का दौरा पड़ा है इनको। भगवान, कुछ हो गया तो मेरा और इनका क्या होगा? सुनैना की सौतेली माँ उसी तरह बार बार दोनों लड़कियों की गलतियाँ निकालती हुई बोली। ज़मीन पर पड़े उनके पिता लगभग बेहोश हो चुके थे और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें सच में किसी बात का गहरा सदमा लगा है। उसके बाद उसके पिता बेहोश हो गए। सब मिलकर उन्हें सोफे पर लिटा दिया। फिर सुनैना अरुण को डॉक्टर अंकल को बुलाने के लिए भेजती है। सुनैना उस दिन अपने घर से नहीं निकल पाई, लेकिन नैना अपनी सौतेली माँ और पिता को ध्यान से देखती है तो वो समझ जाती है कि ये सब एक नाटक था उन दोनों को रोकने के लिए। उसने ये बात सुनैना को भी समझाई, लेकिन सुनैना बोली, नहीं, ऐसा नाटक नहीं है, आखिर वो हमारे पापा हैं, और जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, और मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। सुनैना की बातें सुनकर नैना समझ गई कि सुनैना के लिए सब कुछ छोड़कर उसके साथ चली जाना इतना आसान नहीं था। इसलिए वो उस वक्त सुनैना से कुछ नहीं बोली, लेकिन अपने मन में कुछ सोच ली। फास्ट फॉरवर्ड। आदित्य, सुनैना के कॉलेज में। आदित्य के दूसरे क्लासमेट्स को पता चल गया था कि आदित्य कॉलेज की किसी लड़की को पसंद करता है, लेकिन किसे, ये किसी को नहीं मालूम था। कोई भी आदित्य का इतना पक्का दोस्त नहीं था कि आदित्य उसे सब कुछ बताए। आदित्य इतना कुछ जाहिर नहीं करता था, वो हमेशा से अपने एक्सप्रेशंस छुपाने और सब कुछ अपने अंदर ही रखने में माहिर था। उसे अपने घर पर भी ऐसा कोई नहीं मिलता था जो उसकी बातें सुने और उसे समझे। क्या यार आदि, ये लड़की तो इतनी खूबसूरत थी, और पता है मिस क्रेशर भी रह चुकी है अपने फर्स्ट ईयर में, लास्ट ईयर, और तूने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। पता है कितने टाइम से ये तेरे पीछे पड़ी हुई थी, मुझसे तो तेरा नंबर भी मांग रही थी, लेकिन कुछ सोचकर मैंने नहीं दिया। आदित्य का दोस्त जय आदित्य से कहता है जब वो एक लड़की को मना कर देता है, बहुत अच्छा किया जो नहीं दिया मेरा नंबर इसे, तेरा बहुत बहुत एहसान मुझ पर। मैं ना इन सब में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले ही किसी से बेपनाह प्यार करता हूँ और हमेशा उससे ही करता रहूँगा। हाँ यार, बहुत दीवाने देखे, लेकिन तेरे जैसा कोई नहीं देखा। जो आज तक तूने उस लड़की को बोला नहीं, और वो तेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी तू उसके लिए इतना लॉयल है। पता नहीं क्या कहते हैं इस तरह के प्यार को, पागलपन, दीवानगी या फिर बेवकूफ़ी। आदित्य की बात सुनकर जय अपनी आँखें घुमाते हुए बोलता है। आदित्य एक फीकी सी मुस्कान मुस्कुराता है। कुछ दिनों बाद आदित्य के फ़ोन पर उसके घर से कॉल आता है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आदित्य अपने पिता से बहुत प्यार करता था। उनके एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई, लेकिन वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलता है। जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचता है उसके पिता की मौत हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत एक्सीडेंट से हुई थी और वे शराब पीकर नशे में गाड़ी चला रहे थे। आदित्य जानता था कि उसकी माँ के बाद से उसके पिता बहुत दुखी रहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने आप को शराब में डुबो दिया था। आदित्य जब भी अपने घर जाता था अपने पिता को ज्यादा ड्रिंक करने से मना करता था, लेकिन उन्होंने कभी उसकी बात नहीं मानी। आज उनके चले जाने के बाद आदित्य एकदम टूट गया था, बिल्कुल अकेला हो गया था। लेकिन अपने पिता की मौत के बाद आदित्य पर ज्यादा जिम्मेदारियां आ गईं। आदित्य जैसे तैसे खुद को संभालता है, लेकिन एक दिन घर पर अपने पिता के कमरे में उसने उठाकर उनकी बची हुई शराब की बोतल से शराब पी ली। उस दिन उसे बहुत अच्छा लगा, वो अपने सारे दुख और तकलीफ भूल गया। फिर उस दिन से वो खुद भी ड्रिंक करने लगा, लेकिन साथ ही अपने पिता का काम करता रहा और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में उसने अपने इर्द गिर्द एक दीवार बना ली। वो किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देता था और कॉलेज जाना भी कम कर दिया। उनका कॉलेज का साल कुछ इसी तरह बीत गया। सुनैना के फाइनल एग्जाम खत्म हो चुके थे और वो अपने MBA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। आदित्य का MBA फाइनल ईयर था और अब वो अपने काम में ज्यादा बिजी रहता था, इसलिए कॉलेज नहीं जा पाता था। लेकिन वो सुनैना को एक पल के लिए भी नहीं भूला था और उस पर पूरी नज़र रखता था। वो कहाँ जाती है, क्या करती है और उसके घर पर क्या चल रहा है, सब आदित्य को पता रहता था। तभी आदित्य को पता चलता है कि सुनैना की बड़ी बहन नैना अपने घर से भाग गई है और इस वजह से नैना का घर से निकलना बंद करवा दिया गया है। आदित्य को बहुत तकलीफ हुई। वो कई दिनों तक सुनैना को देख नहीं पाया। पहले वो कभी कभी कॉलेज जाता था दूर से सुनैना को देखने के लिए, फिर बाहर कहीं अपनी कार से नैना का पीछा करता था सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए। और फिर आदित्य को पता चलता है कि सुनैना की सौतेली माँ ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी है और सुनैना बिल्कुल भी उस शादी के लिए राजी नहीं है। आदित्य भी सुनैना को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने सामने से सुनैना के परिवार वालों के सामने सुनैना के साथ अपनी शादी करने का प्रस्ताव रखा। सुनैना के परिवार वालों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो उन्हें आदित्य की बात माननी पड़ी। सुनैना की सौतेली माँ तो वैसे भी किसी भी तरह सुनैना की शादी करवाना चाहती थी, चाहे वो कोई अधेड़ उम्र का गरीब हो या फिर आदित्य जैसा अमीर नामी पैसे वाला शराबी जिसके बारे में उन्हें ज्यादा कुछ भी ना पता हो। और फिर इस तरह आदित्य और सुनैना की शादी तय हो जाती है। सुनैना के माता पिता किसी भी तरह की मुसीबत नहीं मोल लेना चाहते थे और वो चुपचाप आदित्य की बात मान लेते हैं। आदित्य बोलता है कि शादी उसके बंगले पर होगी। सुनैना के घर वाले इसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। शादी का पूरा खर्चा भी आदित्य की तरफ से होता है। सुनैना के घर वाले बस उसमें शामिल हो जाते हैं। सुनैना को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। उसे जबरदस्ती दुल्हन बनाकर मंडप में बिठा दिया जाता है, जिसका वो पहले काफी विरोध करती है और चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। फ्लैशबैक स्टोरी एंड।
ये सारी स्टोरी और पूरी बातचीत पता चलने के बाद सुनैना की आंखों में आंसू थे। आदित्य जब ये सब कुछ बता रहा था, उसी बीच वो ये सब सोच रही थी कि उस समय उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था, उसकी और उसकी बहन ने कितनी मुसीबतें उठाई थीं। आदित्य बिना सब कुछ जाने ही उसे अच्छी तरह से समझता था कि उसने कभी भी सुनैना की मुसीबतें नहीं बढ़ाईं और बिना किसी उम्मीद के वो उसे एक तरफा बेपनाह प्यार करता ही गया। ये सब बताने के बाद आदित्य जब सुनैना की तरफ देखता है और उसे इस तरह देखते हुए आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। मुझे उस तरह तुम्हारी बिना मर्जी के तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं किसी और से भी तुम्हारी शादी होते हुए नहीं देख सकता था। सुनैना सिर्फ तुम ही बची थीं जिसके लिए मैं जिंदा था, और अगर तुम भी मेरी लाइफ में नहीं आती तो मैं कब का मर। आदित्य जैसे ही ये बात कहता है, सुनैना उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है और अपनी आंखों से इशारा करते हुए उसे आगे कुछ भी बोलने से मना कर देती है। वो जल्दी से आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य भी उसे कसकर गले से लगा लेता है और बोलता है, उसी तरह उसे अपने गले से लगाए हुए पूछता है, और भी कुछ जानना है या फिर सब पता चल गया? वैसे अपने हिसाब से तो मैंने सब बता दिया। आदित्य की बात सुनकर सुनैना पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन कुछ पल के बाद अपने आंसू पोंछते हुए थोड़ा पीछे होकर आदित्य की तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ जानना है कुछ और भी, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सुनैना की ये बात सुनकर आदित्य थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और इसी तरह सोचते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अब और क्या जानना है सुनैना को। क्रमशः हाँ, तो हमारे आदित्य और सुनैना की पास स्टोरी कंप्लीट हो गई। ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी था कि आखिर आदित्य ने सुनैना से शादी क्यों की थी, और हमें नहीं लगता कि सुनैना ये सब जानकर आदित्य से जरा भी नाराज होगी। आखिर आदित्य ने कितना कुछ झेला है और उसने कभी भी सुनैना से कोई उम्मीद नहीं रखी, किसी भी तरह की कोई मांग नहीं की। वो बस अपने प्यार में देना जानता है। और अब क्या जानना चाहती है सुनैना, क्या पूछेगी ऐसा? क्या लगता है आप लोगों को? जल्दी जल्दी सोचिए, क्या आप लोग भी सुनैना की तरह ही सोचते हैं? बताइए कमेंट में।